राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 8 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम
वराकृति नवदवंधनम परम ब्रह्म वराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे कृतम पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 प्रार्थना है आप कुछ भी लिखे ऊपर भगवान का नाम लिखे श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः ओम राम हरि कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद ऊपर कुछ नाम भगवान का लिखना चाहिए। और पूछा है कि आचार ही नेदा बहुत ठीक बात कही मानो आचरण जिसके शुद्ध नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। क्या सिद्ध क्या हुआ बाहर की चीजें हैं वे आदमी का उद्धार नहीं करती है भीतर का जो भाव होता है संयम का भाव है तपस्या का भाव है त्याग का भाव है भीतर का वो भाव कल्याण करता है बाहर वेद पुराण स्मृति आदि सहायता करती है गुरु है संत है महात्मा है ये सहायता करते हैं परंतु उद्देश्य खुद का अपना उद्देश्य हो और उद्देश्य अनुसार अपना भाव शुद्ध हो तो उस वेद पवित्र करते हैं। आचार दो तरह का होता है एक सदाचार होता है एक शौचाचार होता है। शौचाचार जो शरीर इंद्रियों की मन की इनकी शुद्धि की जाए वो शौचाचार है जगृति का आदि शरीर की शुद्धि है ये शुद्ध शौच होता है शौचाचार परेत संसार का ऐसे ही शौचाचार जो सदाचार है मन बड़ों के साथ में समान के साथ में छोटों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए शुद्ध व्यवहार स्वार्थ का त्याग कर उनके हित की दृष्टि से बर्ताव करना चाहिए ये दो बात याद रखकर किसी के साथ में व्यवहार करा लेन देन है बोल चाल है जो कुछ करना हो अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके और दूसरे का हित सोच करके उनका कल्याण सोच करके उनके साथ बर्ताव करना ये सदाचार होता है और शुद्धि करना है वो सदाचार है वाणी की शुद्धि है मन की शुद्धि है इंद्रियों की शुद्धि है इसमें राग द्वेष दोष खास दो है इंद्रिय से इंद्रिय चार थे राग द्वेष हो गए वैसे तो कई और निर्वशन आगछेद इनके वशीभूत न हुए राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आदि का आसन किया जाए तो प्रसाद की प्राप्ति प्रसाद से संपूर्ण दुखों की हानि होती है। इस बात से शौचाचार सदाचार दोनों में आवश्यक है न शौची विनाचारू न सत्य देश आज भी संपत्ति वालों के लिए सोलवा अध्याय भगवान कहा है न शौच विनाचाचार शौचाचार भी नहीं है सदाचार भी नहीं होता आज भी संपत्ति वाले आज संपत्ति वाले ये है जो केंद्र पोषण पारायण है संग्रह करना सुख भोगना इतना ही जिनका उद्देश्य है उनमें शौचाचार सदाचार नहीं होता सदाचार भी नहीं कर सकते और शुद्धि भी उनमें नहीं होते क्योंकि आश्रम संपत्ति वाले होते हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, वो बंधन करने वाली है, पतन करने वाली है, अधोगति ले जाने वाली है। अधोगति के दो भेद है, स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक, इसमें ले जाने वाली है। तो ऐसा शौचाचार सदाचारहीन होता है, उसको वेद पवित्र नहीं कर सकते। तात्पर्य केवल वेदों का पढ़ने मात्र से वो पवित्र नहीं होते, इससे वेदों का तिरस्कार नहीं है, वेदों की निंदा नहीं है, इसमें शौचाचार सदाचार की प्रशंसा में तात्पर्य है। मानी वेद सबसे ऊंचे माने गए, पर शौचाचार सदाचार ही वो भी पवित्र नहीं करते, ये तात्पर्य है। वेदों की निंदा नहीं है, वेदों की प्रशंसा है, परंतु मनुष्य में शौचाचार सदाचार चाहिए। वेद तो सबके समान है, सब पर कृपा है, जैसे माँ बाप कृपा रहते हैं ऐसे, परंतु जो स्वयं सदाचारी नहीं होता तो वेद कैसे पवित्र करेंगे, ये तात्पर्य हमें मालूम होता है। परदारेषु मातृवत् और परदेवेषु दोष्टवत्, इसका तात्पर्य क्या है? मानो जो अपनी स्त्री है, स्त्री तो अपनी स्त्री क्या है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके लिए तो परस्त्री है ही नहीं। सन्यासी के ब्रह्मचारी तो परस्त्री है ही नहीं, स्वस्त्री नहीं है। अब गृहस्थों के लिए कहा गया कि जो वानप्रस्थ होते हैं वो भी अपनी स्त्री को स्त्री नहीं मानते हैं, प्रभाव दृष्टि नहीं होती है। और गृहस्थों के लिए खास बात है कि परस्त्री हो कैसे मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियां हैं उनमें मातृवत। मातृवत का अर्थ क्या है कि उनमें पूजनीय आदरणीय माँ की तरह भाव होना चाहिए, उनके स्वरूप को श्रृंगार को देख करके मन का आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये जो आकर्षण है ना, ये काम है, पदार्थों में आकर्षण होता है, लोभ होता है, शरीर में आकर्षण होता है, वो काम होता है। तो आकर्षण होता है वो नहीं हो, जैसे माँ होती है तो माँ के प्रति स्त्री भाव से आकर्षण नहीं होता, मातृभाव से होता है। पोषण करने वाली हमारी, पालन करने वाली हमारी शक्ति है, ऐसा भाव दूसरी स्त्रियों में होना चाहिए। काम वृत्ति से उनका आकर्षण नहीं होना चाहिए, वैसा देखना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा भाव अपना शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे भाव शुद्ध रखने वाले भाई होते हैं, वैसे बहना भी होनी चाहिए। भाई लोग है उनमें भी ये थोड़ी आकर्षण वृत्ति हो जाती है, बहनों के लिए हो जाती है, पुरुषों के प्रति। जहाँ समुदाय ज्यादा होता है उसमें जो सुंदर श्रृंगार करना है, अपनी सुंदरता दिखाना है, उसमें भी भाव अच्छा नहीं रहता है। मन ये भाव न हो, मेरे कोई पुरुष देखे सुंदर देखे, ये भाव न हो। पुरुषों को ये भाव नहीं कि स्त्री मेरे को सुंदरता देखे, मेरा श्रृंगार देखे, मेरे को अच्छा देखे, ये भाव न हो, तो वो परदारेष मातृवत होता है। परदोष से दोषवत होता है, जिसमें पैसों का आकर्षण न हो। प्रियता लग कर जो आकर्षण होता है परद्रव्य में, वो खराब चीज है, दुष्ट की तरह दुष्टवान ढेला होता है, उसको दुष्ट कहते हैं। और घर में जो माता पोता लगाती है, गोबर और पानी को मिला करके जो एक कपड़ा होता है उसको लथपन करके उनसे जो उनको बचती है, उसका नाम दुष्ट है। तो उसकी तरह हो, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता, उसमें कोई प्रियता नहीं होती, खास नहीं होती उसमें। उसमें काम में रहने में तो काम उसको लेते ही है, परंतु काम रहने पर भी उनमें आकर्षण नहीं होता। ये जो कनक कांवड़ी है, ये आकर्षण है, ये मनुष्य की बड़ी बाधा है, दो खास बाधा है ये। अच्छा साधन करने पर भी, अपना विचार ठीक रहने पर भी, उद्देश्य अच्छा अच्छा होने पर भी इनकी तरफ आकर्षण हो जाता है। तो हे नाथ पुकारना चाहिए प्रभु को, और उद्देश्य ही रखना चाहिए। पहले अपना विचार हो जाए पक्का कि कितना ही हमारे पास द्रव्य हो, हम उसमें आकृष्ट नहीं होंगे। इन दोनों में देखा जाए तो ऐसे मुनि मिल सकते हैं कि हाथ में लाखों करोड़ रुपये है और सब व्यवहार करते हैं, पग पग ही उन वर्षों पर अपना मन नहीं चलाता, ऐसे पुरुष तो मिल सकते हैं, पर स्त्रियों का संबंध रहने पर उसका मन ठीक रह जाए ये बात कठिन है। कठिन होने पर भी मनुष्य को करना है, तो ऐसा रहने से वो पारमार्थिक मार्ग में ऊंचा चढ़ता है, व्यवहार में भी उनकी इज्जत होती है और शरीर में भी तप बढ़ता है, तेज बढ़ता है। उनका भाव ऐसा गंदा होता है तो शरीर में भी वो तेज शक्ति वो नहीं होती। तेज उसका नाम है, उसके सामने गुरु दुराचार आदमी न करे, शास्त्र विरुद्ध आचरण न करे, वो तेज कहलाता है। तेज रोम का नहीं है, ऊपर के भय का नाम नहीं है, उनके सामने दुराचारी का भी दुराचार दब जाता है स्वाभाविक। तेज क्षमा हृदय शोषण उद्भवी तक उसका नाम तेज है, तो वो तेज बढ़ता है। दूसरी स्त्रियों से स्पर्श करता रहता है, स्त्री दूसरे पुरुषों से स्पर्श करती रहती है, तो उसमें ये तेज शक्ति नहीं होती, उसमें प्रभाव नहीं होता, वो अपना प्रभाव क्षीण होता रहता है और इनका परिणाम दृश्य अपना प्रकाश तेज शक्ति होती है। साधु धर्म के लिए सूत्र मेरे को बहुत याद है, यतो धर्म पूर्व मीमांसा का सूत्र है ये दूसरा ये शायद। तो ये धर्म इसका तात्पर्य क्या है, श्रेय और अभ्युदय ये दो चीज है। अभ्युदय श्रेय का मतलब है प्रिय श्रेय, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग वो मार्ग है। तो संसार के जो धन संपत्ति वैभव इज्जत प्रतिष्ठा मान सत्कार प्रभाव ये प्राप्त होते ही वो अभ्युदय है, जिसमें धन संपत्ति विशेष हो वैभव विशेष हो उसको कहते हैं वैभव, उसका नाम है, उसकी प्राप्ति का नाम अभ्युदय है, इसका अभ्युदय उन्नति जिससे साधन होती है। श्रेय नाम कल्याण का है, उद्धार का है, जो कल्याण हो जाए तो कल्याण भी हो अभ्युदय भी हो वो धर्म होता है। धर्म केवल संसार उन्नति नहीं, संसार उन्नति भी करे पारमार्थिक भी उन्नति करे वो धर्म होता है। तो दो कैसे होते हैं कि जो सकाम भाव करता है तो सकाम भाव वाले का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, अभ्युदय तो कुछ हो जाता है, पर तो अभ्युदय भी जो वास्तविक अभ्युदय है उसमें कमी रहती है। और अभ्युदय होता है तो क्योंकि ये धारणा है कि कल्याण करेंगे अपना उद्धार करेंगे तो संसार का काम ठीक नहीं होगा, और संसार का काम ठीक करेंगे तो अपना उद्धार नहीं होगा, ऐसी लोगों की भावना रहती है तो गलत है। अपना कल्याण और अभ्युदय मानो संसार समाज का भी हित हो और अपना भी कल्याण हो, ये दोनों आपस में एक एक के पोषक होते हैं। जिसका अभ्युदय ठीक होता है तो अभ्युदय का धर्म ही केवल नहीं है, अपना आचरण है, सबके साथ में प्रेम का आदर का बर्ताव हो और समाज की उन्नति हो। तो समाज की उन्नति ये नहीं कि धन संपत्ति हो जाए उन्नति हो गई, सर्व उन्नति में गई, उनके आचार अच्छे होते हैं, आचरण अच्छे होते हैं, तो वो वास्तव में समाज की उन्नति है। धन केवल हो जाने से वास्तविक उन्नति नहीं है, धन की ज्यादा महिमा नहीं है, धन तो पास में हुआ है। पुराने जमाने की बात अब देखें, इतिहास में बात आती है तो राजाओं के पास में धन नहीं मिला है, धन राक्षसों के पास मिला है, असुर हुए असुरों के पास धन समय हुआ है, तो उनसे अभ्युदय की सिद्धि नहीं होती। अभ्युदय सिद्धि जन कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका उन्नति हो। तो इसमें क्या बात है कि अपने पास जो सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, शरीर की सामर्थ्य है, पद की सामर्थ्य है, अधिकार की सामर्थ्य है, विद्या की सामर्थ्य है, सदाचार की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य दूसरों के हित के लिए लगे, अपने सुख के लिए रहता है वो उतना बढ़िया नहीं है, दूसरों के हित के लिए। ये जो रामायण में आया है समर्थ कौन है दोष पुषाई, तो समर्थ कौन है, समर्थ जो अपने बड़ा धनी हो गया, ऊंचा हो गया, वो समर्थ हो गया, वो समर्थ नहीं है, ये सामर्थ्य है राक्षसी आसुरी सामर्थ्य है। सामर्थ्य वो है कि जिस सामर्थ्य से असमर्थ को भी समर्थ बनावे, उनको भी श्रेष्ठ कर दे, वो सामर्थ्य होती है। वहां दृष्टांत है रवि पावक सुमसरे की नाई। जैसे रवि सूर्य है तो सूर्य समर्थ किस बात में समर्थ है कि सूर्य के सामने चाहे जल हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे प्रसाद किया हुआ हो, चाहे गंदी चीज पड़ी है, नला भी पड़ा है, तो उसको खींच देता है, उसको ईश्वर खींच करके पवित्र जल करके बसा देता है, तो गंदगी को भी पवित्र कर दे, ये समाज सामर्थ्य है। नहीं तो आज के लिए धनी आदमी है, राजा है, बड़े अधिकार पर है, बड़े समर्थ है, वो समर्थ नहीं होता है। वो समर्थ का है, वो सामर्थ्य कहाँ है? वो तो एक तरह ठीक नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है वो। तो रवि पावक अग्नि, अग्नि सबको भस्म कर देती है, मुर्दे में भी जला देती है और हव्य पदार्थों को भी जला देती है, परंतु कुंडोष न लेकर के वो उन सबको पवित्र कर देती है, सब एक बना देती है, सौखाक बना देती है, तो वो अशुद्धि को भक्षण करके शुद्ध निर्मल कर दे। वो रवि पावक और सुरसरी जैसे गंगा जी है, जो गंगा जी है गंदे नाले भी पड़ते हैं और ये नद भी आ जाते हैं, कई नदियां आ जाती है, कई झरने आ जाते हैं, तरह तरह के सब गंगा जी में आने पर उसका नाम गंगा जी पड़ जाता है। गंगा जी में जमुना जी मिल जाती है तो अगर गंगा जी नाम हो जाता है। बड़े 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 नद सोन नद आदि बहुत आगे आते हैं, ब्रह्मपुत्र आदि, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां भी आ जाए तो वो गंगा जी बन जाती है। तो उस सबको गंगा जी बना दे, ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य नाम अशुद्ध को शुद्ध कर दे, निर्मल समल को निर्मल कर दे, गंदगी ले जाने वाले को पवित्र कर दे, कल्याण कर दे, ऐसे जो सामर्थ्य होते उनका वो नाम है सामर्थ्य। तो वो अभ्युदय है, असली अभ्युदय जिसमें सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य दूसरों के हित का ही होता है। तो वो अभ्युदय सिद्धि जाए वो धर्म है। तो धर्म का अनुष्ठान करने से दोनों बातें होती है। जैसे मनु महाराज मनुस्मृति लिखी है तो धर्मशास्त्र लिखा उन्होंने, और भी गृहस्थ में रहे, प्रजा का पालन किया, परंतु वे कहते हैं कि भाई होयन विषय विराग भवन बसत भाषोत्पन्न, मतलब बूढ़े हो गए, परंतु विचार किया कि हमने भगवान का भजन नहीं किया, विशेष वैराग्य नहीं हुआ, तो दंपति दुख है, दोनों को पति पत्नी के दुख हुआ, भजन समय
बहुत दुख लाग,
अति दुख लाग, जन्म गए भगई भक्ति बिना, तो भक्ति बिना हमारा समय चला गया, ये दुख हुआ। तो ये दुख हुआ तो ये दुख क्या है? ये धर्म का प्रभाव है। जो आदमी धार्मिक भाव में रखता है कभी धर्म से इधर उधर नहीं होता, उसकी वैराग्य होगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। तो धर्म का आचरण करने वाले को वैराग्य होगा। आज बूढ़े हो जाने में वैराग्य नहीं होगा, कारण क्या है? गृहस्थ का आश्रम किया, गृहस्थ आश्रम में रहे, धन कमाया, कुटुंब का पालन किया, पर धर्म का आचरण नहीं किया। अनीति से अन्याय अर्थ संचय, अन्याय से अर्थ संचय करते हैं तो उनको वैराग्य नहीं होता। ये एक बड़ी मार्मिक बढ़िया बात है। साधु आश्रम में गए तो साधु आश्रम में भी नियम के अनुसार धर्म पालन नहीं किया उनको वैराग्य नहीं होता, गृहस्थ आश्रम वैराग्य नहीं होगा। धर्म पालन के लिए धर्म तो विरति योग तो ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तो धर्म का आचरण करेगा तो वैराग्य होगा ही, क्योंकि धर्म में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वो करना है। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान हो जाए तो दोनों ज्ञान में अकर्तव्य न करे, न करने लायक काम न करे, न करना चाहिए वो न करे, न कर सकते वो भी नहीं करना है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है। तो इस धर्म के अनुष्ठान में भी तो निषेधात्मक है ये श्रेष्ठ है, विध्यात्मक अच्छा है, विध्यात्मक निषेधात्मक श्रेष्ठ है। निषेधात्मक में स्वतः धर्म का अनुष्ठान होता है। तो ऐसे धनकाद करने से, धर्म के आचरण करने से अभेद्य भी होता है, निःशेष भी होता है। कल्याण भी होता है और संसार में उन्नति होती है। तो सत्संग भजन ध्यान धर्म का अनुष्ठान करने से लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। ये धारणा है एक भगवान का भजन करें तो संसार का काम नहीं होगा, संसार का काम है तो भजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। थोड़े अंश में है किसी में, मैं खास बात ये नहीं है। धर्म का अनुष्ठान करने से दोनों बात होती है, अब भेद होती है श्रेय होता है, श्रेय और प्रेय दोनों बात होती है। एक एक शिव मार्ग प्रिय मार्ग अलग अलग भी है, दोनों के एक एक पोषक भी है। कहते दानकर्ता के उत्तराधिकारी कौन कौन है? दानकर्ता का अधिकारी खास मालिक दान करता है, जिनमें द्रव्य कमाने में साथ रहने वाले जितने हैं वे खास है। इसमें भी स्त्री विशेष होती है, जो पति बता स्त्री है, पति की सेवा करती है तो दान पति करता है, उसका स्त्री को आपसा मिलता है। दान ही नहीं, संध्या करता है, गायत्री करता है और भी जो पुण्य काम करता है उस सब के भागीदार स्त्री बिना किए भागीदार हो जाती है, क्योंकि वो स्त्री मातृत्व होती है, वो मालिक होता है और उसके पीछे आई है। उसने अपना माता पिता भाई संबंधी कुटुंबियों को छोड़कर एक के पीछे आई है तो वो धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी इस वास्ते कहलाती है कि दान धर्म पुण्य जप ध्यान पति करेगा उसका आधा भाग उसको मिल जाएगा। इस वास्ते पुरुषों की दो जनेऊ होती है, एक जनेऊ अपनी एक स्त्री की एक भाव है। दूसरा भाव ये है दो जनेऊ होने का कि जो संध्या बंदन आदि करना हो तो बाएं कंधे पर वस्त्र होना चाहिए शास्त्र की विधि के अनुसार से। वो वस्त्र कभी नहीं भी हो तो दो जनेऊ एक जनेऊ होगी एक वस्त्र की जनेऊ हो गई। इस वास्ते दो जनेऊ रखते हैं जन्मधारी युद्ध हुई तो वो धारण करने से वो स्त्री को पुण्य स्वभाव मिलता है, आपसाव मिलता है। लोगों में भी देखो डॉक्टर होता है तो उसी स्त्री जिनको पढ़ी लिखी नहीं जानते हैं वो डॉक्टर नहीं कहलाती है, और पंडित होता है पढ़ा लिखा उसको एक ही जान जैसे वो पंडितानी कहलाती है बिना पढ़े लिखे, क्योंकि वो पति के साथ है ना, पति का अधिकार उसको मिलता है तो खास अधिकारी वो होती है। और कुटुंबी भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो कमाया जाता है धन उसे पुरुष अकेला कमाने पर भी अकेला ही धर्म नहीं है, अपने कुटुंब वाले भी उस धन के भागीदार होते हैं। तो धर्म के भागीदार होते हैं, पाप के भागीदार नहीं होते। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करेगा वो तो धन कमाने वाले अकेले ही लगेगा, और उसमें जो दान पुण्य आदि शुभ काम करेगा उसमें घर के भागीदारी होंगे। ये तो कई कई पूछते हैं नौकरी करने वाले, कभी नौकरी करें तो वहां पर कहते हैं खराब लिखो ठीक तरह से, झूठा खत लिखो झूठा पूजा लिखो, कभी कहते हैं लिखना पड़ता है क्या करें। तो मैं सम्मति देता हूँ कि आप ऐसा न करो, आप ऐसा कर दो कि मैंने आपके सामने अपना समय बिक्री किया है, आपका काम करूंगा खटकर परिश्रम करूंगा तो मैंने समय बिक्री किया है, मैंने धर्म बिक्री नहीं की है कि पाप करके ही आपके मैं साथ दूं, ऐसा मेरा काम नहीं है। समय आपको जितना है उतना आपके काम में लगाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, बड़ी नम्रता से प्रेम से कहना चाहिए। कहते ऐसा करें तो छोड़ देगा, तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए छोड़ देना बहुत ऊंची बात है, पाप करते हुए छोड़ जाते हैं बड़ा छोड़ तो जाते ही है, पर धर्म के लिए छोड़ने वाले कितने गए बहुत दुर्लभ है। इस वास्ते धर्म के भागीदार दान पुण्य के भागीदार घर वाले सब ही होते हैं, ऐसे पुण्य कर्मों के भागीदार होते हैं, ऐसे श्राद्ध तर्पण आदि के पितर होते हैं वे सब भी भागीदार होते हैं। उनके नाम से भी दान किया जाता है, पिंड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो वे पितर भी भागीदार होते हैं, क्योंकि पितरों के धन का बिना लिखे पढ़े आप अधिकारी हो जाते हो, मालिक हो जाते हो। आप कहते हमारे पिता का धर्म है मान धन है, तो उस जायदाद का धन का आप बिना लिखे पढ़े अधिकारी हो जाते हो, तो उनका श्राद्ध तर्पण दान पुण्य आदि पितरों के नाम से करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये पाप के भागी होते हैं कि धन संपत्ति तो आपने ले लिया, अगर उन तिथि दिनों को याद ही नहीं करते, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करते, पिंड भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो उनकी जायदाद जमीन तो धन तो सब अपने अधिकार जमा लिया, याद हो जाऊ कुछ भी नहीं करते तो दोष लगता है और करने से पुण्य होता है। इसमें दो मत है, पूर्व मनुष्य के मत में कहते पुण्य नहीं होता, दोष न करने से पाप लगता है, करने से पुण्य नहीं होता। जैसे राजा ने आज्ञा दे दी शहर को सजाओ, तो सजाने में जो कोई बात हो राजा साथ नहीं है नहीं सजा होता है, इस तरह से पूर्ण मनुष्य मत है। दूसरे मत उसमें है दूसरों को भी भागीदार होता है। दूसरी बात वेदों की बात आई है, वेदों के यज्ञों का अनुष्ठान करने पर उसमें जो यज्ञ में हिंसा भी होता है वो कहते पाप नहीं लगता, ऐसी पूर्णवर्ष कहती है। पर दूसरे में ऐसी बात है कुछ हिंसा लगती है, जैसे शतक तत्व कहलाता है, सौ यज्ञ होने करने वाला इंद्र बनता है तो इंद्र को भी तकलीफ नहीं है, वो भागता फिरा कहीं इंद्र भय भी होना पड़ता है, कोई तपस्या करे तो भय लगता है, तो ये भय लगता है वो शत्रु होते केवल पुण्य होते तो उसको डर क्यों लगता है, उसको यातना क्यों होती है, फिर छिपता फिरता है दुख क्यों होता है। तो इसमें संतान ने सिद्ध किया है कि भी ऐसा किया है तो यज्ञ में इसमें कुछ पाप हुआ है हिंसा हुई है उसका फल वो भोगना पड़ता है, पुण्य विशेष होता है हत्या कम होती है तो हत्या का फल भी उनको भोगना पड़ता है पुण्यों का भी। एक मत कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती, परंतु शांति शास्त्र आदि उसको हिंसा मानता। तो पुण्यदान के भागी भी होते हैं जो धन कमाने में भागीदार होते हैं। तो दान करता वर्तमान के भ्रष्ट समाज के सुपात्र का कैसे करे, चयन कैसे करे। देखो सुपात्र कहते हैं जो दान हमारा शुद्ध नहीं होता है, पैसा पाप से कमाया जाता है, उसको पात्र अच्छा मिलना कठिन है, और अच्छा पात्र हो तो उसको देना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा धन उसे लायक नहीं है। अपना शुद्ध अच्छा पात्र हो, संत महात्मा है, त्यागी वैराग्यवान है, तो उसको देना चाहिए शुद्ध, अपने पास में दान शुद्ध करना चाहिए। अपवित्र दान है उसे कुपात्र दाना चवे दरिद्र दारिद्र दोषेण करो तो पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनर्पापी ऐसा बना पापी व्यक्ति होता है। और सुपात्र दाना चवे धनाद्य धन प्रभाव करो तो पुण्यम पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयाति पुनर् धनाद्य पुनर्व भोग ऐसा होता है। तो धन भी अपना पवित्र हो पात्र भी अच्छा हो तो उसे पात्र दिया जाए। पात्र दो तरह का होता है, एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण जाति मात्र से भी दान का पात्र होता है, और वो दरिद्री हो सुपात्र हो लक्षण अच्छे हो और आवश्यकता हो तो दुगुना पात्र होता है। इस वास्ते सुदामा जी की स्त्री ने कहा आप भगवान से मिल जाओ, मैं कहती कुछ मांगो मत भरी। और सुदामा जी को शर्म आती कि मित्र के पास किसी आशा को ले जाना ये अच्छी बात नहीं है, मित्र तो प्यार के मित्र होते हैं लेने के थोड़े ही होते हैं। पर उन्होंने भेजा तो वहां बताया आपको जरूर देंगे क्योंकि आप सदाचारी ब्राह्मण भी है अभावग्रस्त भी है, दो तरह के पात्रता हो गई, अभावग्रस्त होने पर दूसरा भी पात्र होता है और सदाचार से ब्राह्मण पात्र होता है, जाति से भी पात्र है और आवश्यकता होने से पात्र है, तो दूनी पात्रता होती है। आवश्यकता आवश्यक अन्न है जल है वस्त्र है औषध है, इन चीजों के पात्र तो अभावग्रस्त हो जाता है। परंतु दान द्रव्य देना है सोना देना है गाय देनी है कन्या दान करना है ऐसे दानों के पात्र हरेक ऐसा नहीं कि अभावग्रस्त पात्र हो जाएगा, वो पात्र नहीं होता। और पाप से कमाया हुआ पैसा है वो दानों काम नहीं आता, वो अच्छा नहीं होता, वो प्राय अच्छे काम में लगता नहीं है, पापी को दिल पर ले जाए पीड़ी संचय तीतर खाए ऐसा होता है। वो सुपात्र में देना कठिन है, सुपात्र में देना भ्रष्ट नहीं करना है। ये कहानी सुनी याद आ गई, एक शहर में राजा रहते महाराज एक ब्राह्मण रहते थे अच्छे बड़े सदाचारी, अपना नियम ठीक पालन करते भजन ध्यान करते थे, परंतु उनका निर्वाह साधारण रीति से होता था, खुले रीति से रोटी कपड़े भी नहीं होते थे ऐसे साधारण चलते थे। तो उनकी स्त्री ने कहा एक राजा से मिल जाओ, जैसे सुधा मैंने कहा जुर्म उसने तंग किया, वो कहते भी मेरे को जाने में शर्म आती है, मैं जाऊंगा राजा पर क्यों जाऊं। उसने बहुत कहा तो राजा के मन में भी भाव था राजा रहने स्वाद हमारी प्रजा में ऐसे संतोष है, अच्छे सदाचारी वेदपाठी ब्राह्मण है ऐसा समझ रखा था। तो एक दिन ज्यादा करने से वो गए तो राजा ने बहुत आदर किया और कहा कि बड़ी कृपा करी महाराज, आपने दर्शन लिए, आसन लिया, पूजन किया, चलन चढ़ाया, माला पढ़ाई सब किया, परंतु एक बात यह कि महाराज एक दिन और बाहर पधारे, दिया कुछ नहीं, एक दिन और पधारे, आदर किया। किसे चला गया तो स्त्री ने पूछा क्या दिया, कि वो दिया नहीं, आदर सत्कार खूब किया और कहा कि मैं एक दिन और पधारे आप। तो स्त्री ने कहा अब दूल्हा जाएंगे जो जाएंगे पाठ कर दे, तो राजा ने विचार किया कि अच्छे ब्राह्मण है शुद्ध, इनको देंगे मेरा इतना द्रव्य शुद्ध नहीं है। राजा लोग कर का जो दान आता है, कर का धन आता है ना, प्रजा से जो कर लिया जाता है वो राजा धन अपना धन नहीं मानते थे, अपने बड़े साधारण रीति से नजर चलते थे, वो प्रजा के लिए ही मानते थे। प्रजा की आवश्यकता, कुआ बनाना है, कहीं वो तालाब बनाना है, कहीं कोई धर्मशाला बनाना है, कहीं ऐसे प्रजा के लिए काम आ रहे हैं। विचार किया कि मेरे पास साधारण धन है, कर का धन है, वो कैसे महाराज में भी मेरा इतना पवित्र धन नहीं है। तो रात्रि में वो साधारण वेश करके निकले, तो रात्रि में सब लोग सोते हुए दुकानें सोते हुए था, एक लोहार कड़ा घर रहा था, तो शीतकाल था ठंडी में, तो ठंडी में लोहा गलने में तपत में ठीक रहता है, ज्यादा नहीं लगता और काम हो जाता है। तो लोहा घर रहे थे, उनके वो घंटा बजाने वाले थे, तो वहां राजा ने कहा मेरे कुछ काम मिल गया कि काम ये घर लगाओ। तो वो क्या था, वो घर मार दे, वो थोड़ा पड़ा है परेशानी कूट रहे थे, अब वो लगा थे जोर जोर से, तो बड़ी तेजी से बड़े बढ़िया उत्साह से उसने घर लगाया अच्छे तरह से। तो लोहार बड़ा राजी हुआ कि दूसरे कोई आते हैं इतना नहीं कहते, तत्परता से काम कर रहा है, आदमी तो अच्छा है। तो उसको चार पैसे दिए, पुराने चार पैसे बहुत ज्यादा होते थे, चार पैसे दे दिए, लेकर चला गया, फाला हो गया। और राजा के क्या काम पड़े बजाय तो फाला हो गया, पीड़ा हो गई, पर वो ठीक किया। महाराज को बोला एक दिन महाराज पधारे, तो बड़ा पूजन किया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, आदर किया और इन चार पैसे महाराज के चरणों में अर्पण कर दिए। तो महाराज बड़े पुष्प बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और अपने ब्राह्मण के लेकर के चले गए। तो स्त्री ने कहा क्या दिया आज, दिया है दिया है, फिर बताएंगे, तो बताओ उसे क्या दिया, कुछ ज्यादा लगे तो कहते अभी पीछे बताऊ, पीछे ठहर गया, अभी थोड़ा भोजन कर लें फिर बताऊंगा। रसोई बनाई, भोजन कर दी, वो बार बार पूछते है कि आज तो राजा खूब दिया होगा, खूब दिया होगा, क्या दिया, और पति बहुत अंदर से पूछ रहे हैं। वो भोजन कर रहे थे, ज्यादा तंग किया तो ये दिया, उसे देखा फेंका, राजा ने तो दिया और आपने लिया चार पैसे, क्या तो आपकी इज्जत रही, क्या राजा की इज्जत रही, राजा दान दे चार पैसे दे, अरे आप पंडित इतना से मेरे आपको चार पैसे दिए और रात में फेंक दिए। महाराज चुपचाप रहे, सूर्य कहते हैं कि वो चार पैसों में चार सोने की ऐसी छलेगा निकली आई, जो उनको काट ले फिर निकल जाए फिर काट ले। लोग कहते हैं सच्चा दान उग गया था, तो सच्चा दान उग गया वो, तो ऐसे इतना में क्या हुआ, हमारे सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोग में जावे, देने वाली सती हो और लेने वाला संतोषी हो तो दोनों को पुण्य होता है। ये जो एक धारणा है कि देने वाले को तो पुण्य होता है और लेने वाले को पाप लगता है, अपराध लगता है, कर्जा चढ़ता है, तो ये बात भी सच्ची है, पर लेने वाला ही पात्र होता है, देने वाला पात्र दोनों को पुण्य होता है। तो दोनों को पुण्य कैसे होता है, भगवान है वो आपके दिव्य से ही फल नहीं देते हैं, मन अपने कर्तव्य का जो पालन करता है उसका उद्धार होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बेटा हो चाहे बाप हो, भाई हो चाहे मित्र हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने कर्तव्य के पालन करने से उसका उद्धार होता है। जैसे रावण राम जी को नहीं समझता था, मंदिर नहीं समझते थे, बाली नहीं समझता था, तारा समझते थे, तो ये अपने धर्म का पालन करने से उनमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। पति में वो शक्ति नहीं है परंतु उसमें है, क्यों? पति ने धर्म का पालन नहीं किया, उसने अपने धर्म का पालन किया है। तो शेष्य कर्मण्य विधता संसिद्धि धरा स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ सिद्धि बिंदुति मानव, अपने कर्तव्य द्वारे होता है तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्तव्य का पालन करने का उसको पुण्य होता है, तो लेने वालों को पुण्य होता है, देने वालों को पुण्य होता है अपने नियम पर रहने पर। और अन्य लेवा तो लेने वाले कर्जा चलता है। जो सदाचारी होता है धर्म पुण्य करने दान करने वाले वो दान देता है तो उनका पुण्य क्षीण होता है। इसमें मनोमाया दुग्धा गौरव सीधती, जैसे गाय जोर देने वाली होती है और चाचापन ज्यादा रहने पर पुष्ट नहीं होती तो वो दूध निकल जाता है उसका। इसी तरह से सदाचारी में और ब्राह्मण दान लेता है तो उसे तपस्या क्षीण होती है। अगर तपस्या है नहीं लेता है तो कर्जा चढ़ता है, और देने वालों को पुण्य सुपात्र को देने से ज्यादा होता है, ऐसे किसी को देने से पुण्य होता है। शास्त्रों में एक बात ऐसी भी आती है कि पात्र को देना कुपात्र को न देना, परंतु ऐसे आज पात्र कुपात्र का किसी को ये न केवल दान है दीने की दीन दान करे कल्याण। किसी प्रकार से देव आप देने की आदत रखो, सुपात्र कुपात्र देख रहे लोगे तो आपका लोभ है जो हरे को कुपात्र बता देगा ऊपर की रह लाए देंगे ऐसे हो जाएगा। विश्वास दे ऐसे कुपात्र मत देखो, आप स्वयं देखो कि हमारा धन कैसा करे, हम कैसे पात्र है, हमारे भी ऐसा कल मिला जैसे देख लेना वो लेने वाले कुपात्र है तो आप कहने वाले कैसे हो धन कैसा आ गए। इस बार दान देने का जरूर लीजा भी निरीक्षण चाहिए, रोजाना कुछ दाना ध्यान करो भी। शास्त्र ने कहा है एक दो दान एक पाठ पूजन गायत्री संध्या करना और जो शुभ काम करना सेवा करना दूसरों शुभ पहुंचाना ये अविंद्यम देने को कोई दिन बांध नहीं जाए। कोई दिन दान से और पाठ पूजन से और उपकार के काम से बिना कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, हर एक दिन में करते ही रहना चाहिए। गृहस्थ का खास धर्म है ये, दूसरों स्त्रियों और साधुओं का भी है, मैं गृहस्थ के ऊपर विशेष जाऊंगे है। तो इसलिए धर्म का अनुष्ठान अनेक को करना चाहिए। तो वर्तमान में भ्रष्ट समाज है, भ्रष्ट आचरण से वो दान पवित्र नहीं होता। इस वास्ते शुद्ध चाहिए देव। प्राय लोग क्या करते हैं कि दान की चीज रद्दी ले जाते रद्दी, दुकानदारों के हो नारे चाहे सुपारी चाहे सुपारी वो देता है नहीं नहीं पूजन पूजन है तो रद्दी पूजन चाहिए दे गए पूजन है रद्दी पूजाई रद्दी चाहिए। थाली लावे तो ठोक सुन दिया जैसी ऐसी लावे गिलास भी ऐसी कि दान में जानी दान में रद्दी कर देनी है। तो सज्जनों मेरी प्रार्थना है थोड़ी देव मैं अच्छी चीज दो। छाता देते हैं ब्राह्मण दिन सरकार वर्षा हो कपड़े काले हो जाए तो ठीक नहीं है। देखो खेती करने वाले अपना धान बोते हैं ना बीज, वो बीज अलग रखते हैं, खास खास बीज पहले पहले बोलेगा बाजरा देखो तो उसको रखते हैं। वो खेत में डालने के लिए बढ़िया बीज होता है, तो यहाँ खेत में भी बढ़िया बीज देते हो तो मिट्टी में देना है तो उससे भी आपको अच्छा फल होता है। जो पत्र की चीज को दोगे तो रद्दी चीज दोगे तो फल अच्छा कैसे होगा। इस वास्ते अच्छी चीज दो थोड़ी दो, मूल्य ज्यादा नहीं तो कम मूल्य के दो, अपनी दो चीज अच्छी छाता भी काम आवे आसन भी काम आवे धोती भी काम आवे उसमें गमछा है दुपट्टा है वो उसे काम आवे ऐसा दो जिससे कि उसे ठीक हो। तो ऐसे कई भाई बहन ऐसा भी करते हैं और प्राय लोग दान पुण्य के बीच में गंदी चीज लाते हैं। तो ये रिवाज सुधार हुआ, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उतनी पूजो थोड़ी दो कोई परवाह नहीं पर दो अच्छी, अगर ज्यादा दो तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि दान है वो तो चलेगा आपके साथ, जो से उपहार दिया है वो तो आपके साथ चलेगा। और जो अपने काम में ले लोग मानो मिट्टी में लगा खेत हो जाएगा खाओ तो रेत हो जाएगी, तो अपने काम में तो रेत हो जाएगी देने में खेत हो जाएगा। इस वास्ते अच्छी चीज है जो आदर सत्कार के साथ जिसे काम आवे ऐसी देनी चाहिए बढ़िया से। इस तरह से माताएं रोटी और देती है, कोई भिक्षु जाता है तो ठंडी रोटियां दे देती है, तो ठंडी नहीं रहनी चाहिए। आप नहीं खा सको ऐसी देने का अधिकार नहीं है। ठंडी रोटी है, बासी साग है, जैसे गंध आने लग गई, ऐसे साग ऐसी चीज नहीं, ऐसी चीज बाहर रख दो, वो देने की नहीं, बाहर रख दो, ले जाओ कोई, चाहे पशु खा ले कोई, ले जाए तो मर्जी है, पर देने की चीज बढ़िया देनी चाहिए। अब बढ़िया चीज नहीं है, ठंडी रोटी है नहीं, तो क्या करे, फिर उसे नीचे फुलका निकाल कर वो देंगे छिड़क हुआ, तो ऐसे नहीं, अपनी प्रवृत्ति देने में अच्छी चीज रखो, स्वभाव अच्छा बनाओ कि थोड़ी देव देखो अच्छी खा पाया जाए, आप नहीं खाओ वो देने का अधिकार नहीं आपको, बाहर रख दो कोई बात नहीं। तो इस वास्ते अच्छी चीज देना, अच्छे पात्र को देना, अच्छे समय देना, देश काल पात्र देख करके ठीक दान पुण्य है, तो उसके भागी दूसरे भी होते हैं। पाप की कमाई द्वारा किया हुआ दान क्या फल प्रदान करता है, ये फलदान तो करता है, उसमें जो भाव है ना देने का भाव वो उत्तम है, देने का भाव केवल चीज खराब होने से उसका पुण्य नहीं होता, जितनी वो पवित्र होती है उतना ठीक है, देने का भाव पवित्र होने पर अच्छी चीज देगा ही। वो उनसे क्या करते हैं, घर पर कोई मांगने वाला आ गया तो ठंडी रोटी पड़ी है, वो कचरा भी गया, वो मांगने वाला भी गया, दूर चले गए, बोला हुआ काम, तो ये दान नहीं है, उनके हित के लिए दो, उनके काम के लिए दो, ऐसे दान दो, तो ऐसे दान का फल विशेष नहीं होता भाई, मुझे तो भगवान जाने क्या पता क्या है, परंतु कोई काम अच्छा किया जाएगा उसका फल ही अच्छा होगा, जो काम अच्छा नहीं किया जाएगा उसका फल अच्छा कैसे होगा, जैसे बीज हो वैसा ही तो वृक्ष होगा तो वैसा ही फल निकलेगा। इस वजह से पाप की कमाई है वो दान पुण्य के रूप से नहीं, ऐसे आप लगा दो और काम में लगाओ, कोई काम में लगे अच्छी बात है, ऐसे काम में लगाओ, तय का अधिकार है। और जीवन मृत्यु के आयु का निर्धारण देव सर्वतः मानो उम्र जो हमारी है उसका मानदंड क्या है, उम्र कितने वर्ष जीता है, कितने काम जीता है, इसका मानदंड क्या है, किसके आधार जीता है, तो आधार इनकी श्वास है, श्वासा के रूप में जीता है, जितने श्वास लेना है जीता है, जैसे घड़ी होती है कट 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 करती है तो एक एक कट कट में उसकी आयु खत्म होती है, वो जो चलाते हैं ना चाबी, तो चाबी जितनी भरी है जितनी खटखटी है पूरा हो जाएगा बंद हो जाएगी, ऐसे श्वासा है, इस श्वासों के ऊपर वो है, संयम रख करके कोई शांति से प्रतिदान करता है तो उसे आयु का वर्ष आदि का मान बढ़ जाता है, और जो दुराचार करता है उसकी आयु बहुत खत्म, आज वे परिवार निर्णय करते हैं, गर्भपात करते हैं, दुराचार करते हैं, इनसे आयु कम हो जाती है, शरीर भी खराब हो जाता है और भाव खराब होने भावनाएं भी तेजी चलती है, जब कोई पाप के मन में आती है तो श्वास तेजी चलता है, तो दोनों तरह से भ्रष्ट होते हैं, ये बहुत जल्दी मरेंगे, उम्र से पहले मरेंगे, जो बात करते हैं पुरुषों में भी नशबंदी करने वाले पुरुष का शरीर वैसा नहीं रहता, वो जल्दी मरेगा, अभी ये कौनों को मारते हैं ना, इसका मांस बिक्री करता है, तो विदेशों में गाय का मांस तो 100 रुपया किलो बता है, और बछड़े होते हैं आउखे जिनको बैल नहीं बनाया जाए उनका पैसा 100, 200, 300 रुपये किला, ऐसा मांस होता है, ऐसी बात मैंने सुनी है, तो उसका मांस बड़े महंगा, इस वास्ते बछड़ा बछड़ी पुष्ट होते हैं उनको मारने से भी मांस बहुत तेज होता है, तो जब पशुओं का भी उनका पुरुषत्व नष्ट करने पर उसका तेज मांस नहीं होता, तो आपका पुरुषत्व नष्ट करने पर जो संतान उत्पत्ति करने की शक्ति का नाश करते हो तो आपका शरीर भी वैसा नहीं रहेगा, और उम्र भी थोड़ी होगी, मरोगे जल्दी, पर मर जाए बेशक मरते मरते पाप तो कर रहे हैं, ये धारणा कर दी, कई बहनों का मृत्यु गर्भपात करते हुए मृत्यु होगी, ऐसे मेरे पास समाचार आए, मेरे को मिला है ऐसे पोता दे पोता आई है, तो वो मर जाओ, मर बेशक जाओ, मन पाप करना, कलि केवल मूल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना, कलयुग में ऐसे पाप हो गए कि पाप पयो निधि, पाप रूपी समुद्र में मन जिसका मछली बन गया, कह दिया जाए कि भाई ब्लैक नहीं करना है, देखो कहीं होता है फिर सेल्फ हेल्प चोरी नहीं करना है, सही से मैंने डर जाए काम का फिर व्यापार कैसे होगा। जैसे मछली को कह दिया जाए पानी से बाहर निकालेंगे सुनकर घबरा जाए, ऐसे एक शब्द घबरा जाते हैं सुन करके कि ऐसा कैसे होगा। आजकल के जमाने में तो पाप जन्म मन है वो पाप पाप रूपी जल में मछली बन गया, उसे दूर होना चाहते ही नहीं, कहते समझते नहीं और कहते बने काम नहीं चलेगा तो क्या होगा सर। कहते क्या क्या रोटी नहीं मिलेगी, तो रोटी मिलने से नहीं मिले क्या होगा, कह रहे क्यों मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाकर नहीं मरोगे, मरना तो रोटी खाकर ही मर भूखे मरना तो क्यों, कुछ दिन पाप पूरा कर ले तो उससे हमारे कुछ दिन काम चलेगा, नहीं तो जल्दी मरना पड़ेगा। तो जल्दी मरने में क्या हानि है, हानि मर जाएंगे जल्दी। तो काम क्या किया क्या पाप अन्याय किया तो जल्दी मर जाएंगे, तो पाप की पोटली छोटी रहेगी, ये मतलब कुछ पाप की पोटली बड़ी बनाकर फिर मरेगी कुछ देर और पाप कर ले। तो ये मनुष्य मेरा धर्म सफल है क्या, ये मनुष्यता है कुछ दिन जी जाए तो पाप अधिक कर ले अधिक, उनसे जल्दी मिलना अच्छा है। कुंभकर्ण हम शोभित लेके मोगम पार से जीवित रामायण मोगम पार जीवित सब लोग गाल देते वो भी बड़े ढंग से मोगम पार से जीवित कर दिया मर जाए तो अच्छा, जीना खराब है जो पाप करता है उसमें एक जीता है तो उनसे मर जाना अच्छा है। एक पाप ही मर गया संसार से पृथ्वी का भार कम हो गया। तो भाई पुण्यात्मा होने के लिए धर्मात्मा होने के लिए भगवान का भजन करने लेके जीना है, पाप करके अपना उम्र खत्म नहीं करनी है। तो इसका मान जल रहा श्वास, और श्वास सदाचार से संयम से श्वास धीरे चलता है। रावण भी जिस रावण बस बरती नर नारी स्त्री पुरुष सब देवता कांपते थे, परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए आ गया स्वामी के मैंने कुत्ते इधर देखता है इधर देखता है भय लगता है तो कोई तेज चलती है मरे कर जल्दी। तो पाप के भगवान ही मना करते हैं भीतर से अंदर नहीं आ जाते काम मत करो, निषेध करने में भी करते हैं तो उसे उम्र घटती है आयु खत्म होती है सदाचार खत्म होते हैं अंतकाल घिर जाता है शांति भंग हो जाती है सब तरह से पाप होता है। तो भाई बहनों से कहना है कि पाप का कार्य मत करो, इसे पाप भी लगेगा उम्र भी कम होगी शरीर भी रोगी होगा शरीर भी कमजोर होगा। हमारी बहन ने गर्भपात करने वाले चल गए सौ दो सौ उसने सबने बताया ये डरना ये है इतना खून गिरता है जैसे महाराज के महीने के महीने उसका खून डरना ही पड़ता है और खून बंद नहीं होता गर्भपात किया जिसका उन्हें कई बीमारियां हो गई है कमर में दर्द हो गया है हर मंगल पे रात आती है छाती में दर्द होता है ऐसी चलने फिरने की शक्ति कम होती है खड़े होते अंधेरी आ जाती है ऐसे गर्भपात करने से ऐसे रोग स्त्रियों के हुए हैं। मेरे पास आई बात है ऐसे जोधपुर में एक नायन है कंपाउंडर तो उसने ऐसी बातें कही गर्भपात करने वाली ऐसे दशा होती है शरीर कमजोर हो जाता है जैसे कपड़ा सीने से पासा सीओ करो जितने जैसे सीओगे उतना कपड़ा कमजोर हो जाएगा ऐसे शरीर को जितना ही आप बिना धर्म से नष्ट करोगे उतना शरीर कमजोर हो जाएगा चमड़ा कमजोर हो जाएगा शरीर कमजोर हो जाएगा श्वास में तो जल्दी मरोगे तो मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर पर्दे का दंग होगा तो धन नहीं होता हम रोटी के खाएंगे तो मर जाओगे तो थोड़ा पहले मर जाओ अरे पहले मरोगे उम्र से पहले नहीं मरोगे श्वास जब तक है तब तक नहीं मरोगे। पर मान लो दो जन पैसे उस न्याय से कि आप धन पाप नहीं करोगे जल्दी मर जाओगे तो अच्छी बात है पवित्र पवित्र मर जाओ मरना भी अच्छा है। अरे बहुत जीना है किस काम का जैसे पाप अधिक से अधिक समय करके फिर मरो तो इस करके से मरने में कोई हानि नहीं है। मरने में पाप नहीं लगता है अन्याय करने में पाप लगता है मरने में पाप नहीं लगता आपने कोई दोष नहीं लगेगा जल्दी मर गया तो पाप लगेगा ऐसा पाप नहीं होगा आपका संयम होगा उसे तपस्या होगी त्याग होगा उसे शांति मिलेगी। इस बात शिवी दधीचि हरिचंदन नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा धर्म के पालन करने में करोड़ों कुछ है तो वे क्लेश है वो बड़ी तपस्या होती है जानकर जो गाम आदि सहता है शीत सहता है तपस्या करता है भूख रहता है उसकी अपेक्षा धर्म के पालन करने नहीं होते तपस्या बड़ी ऊंची होती है। एक अम्बालाल नाम के गार्ड थे जिसे पढ़ता था उस समय उसकी बात आई थी, सच्ची एक कहानी आई थी। तो वो गार्ड था भगवान का भजन करने वाला, तो गार्ड उधर के स्टेशन मास्टर के पास में गया तो बातें चली। उसने कहा भगवान का भजन शेष है, भगवान का भरोसा ही सबसे ऊंचा है, ये पाप का भरोसा है और का भरोसा व्यक्तियों का भरोसा कच्चा भरोसा है, अब भगवान का भरोसा ही सच्चा है, गार्ड ने कहा। तो बातें स्टेशन मास्टर कह दिया कि भगवान का भरोसा है तो मैं देखू तुम गाड़ी मत जाओ, अभी ये रेल जा रही है उसे मत जाओ, देखो नहीं जाएंगे तो गाड़ी खरीद मिला, गाड़ी वहीं रह गया, गाड़ी चली गई, अब स्टेशन पे तो गार्ड नहीं है। अंग्रेजों का जमाना था, जब मैं पढ़ता था उस समय कहा थे, तो अंग्रेजों ने बात करी फिर मुकदमा चला, अंत में उसको कहा तुम खारिज कर देते हैं, पेंशन होने वाली थी कुछ दिनों के बाद वर्षों वो खाली कर दिया। तो वो अंग्रेज ने जब सुनाया कि तुम्हारे पास खर्च जाओ यहाँ से तुम्हारा मनुष्य निकाल दिया जाता है, तो वो बड़ा प्रश्न उठाए क्योंकि बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत राजी हुआ, खूब प्रसन्न होकर गया। तो अंग्रेज प्रश्न पढ़ा कि पेंशन होने वाली थी और इज्जत भी बढ़ थी, फजीती भी हुई, रुपये भी गए, कुछ फिर राजी क्यों हुआ है? उसे बुलाया, भाई तुम राजी कैसे हुए? कि महाराज भगवान ही कर पाए, ऐसे दुख बहुत पाए पर भगवान के नाम से दुख मिल जाए वो दुख कहाँ पड़ा, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो भगवान के नाम पर आज मेरे को खर्च कर दिया गया, बड़ी आनंद की बात है। बुलाया फिर उसको रख लिया, तुम ले जाओ। तो भगवान के नाम से धर्म के नाम पर जो दुख आता है वो दुख बड़ा श्रेष्ठ होता है। आपके आज जमाने में स्वराज मिलने पर लोगों की प्रशंसा करते हैं, शायद दो बार या तीन बार कैद गए हैं, ओ आइए आइए, तो कैद जाने में तो बेइज्जती होती है पर स्वराज के लिए गए इज्जत बढ़ती, कैद तो वही है, वो तीन बार कैद गए अच्छा जी आइए आइए साहब, तो भाई किस वास्ते गए? स्वराज वास्ते करेंगे, पाप कर गए, अन्याय कर गए, चोरी कर गए, डाका डाल गए, हत्या कर नहीं गए, तो कैद में जाने में इज्जत भी बढ़ती है, मन किस वास्ते गए धर्म ये बढ़ती है। तो इस तरह से अपने धर्म पालन करने में सफल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।